मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, 3 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात हो रही है, और इस बीच जो जन्माष्टमी का उत्सव था, मुझे पूरा विश्वास है कि इसे आप सबने भरपूर तरीके से मनाया होगा। जी हाँ, भरपूर तरीके से। तो क्या यह भी कोई तरीका होता है? भरपूर तरीके का क्या मतलब है? देखिए, अगर हम जन्माष्टमी की ही बात करें तो कुछ लोग इस दिन व्रत रखते हैं, कुछ लोग कृष्ण की उपासना करते हैं, कुछ लोग बकायदे कृष्ण भगवान के जन्म उत्सव को मनाने के लिए रात्रि के 12 बजे का इंतजार कर रहे होते हैं, कुछ लोग कृष्ण लीला में मग्न रहते हैं। अलग अलग तरीके से सब इसे मनाते हैं, लेकिन जो मैं भरपूर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं वह एक अलग अर्थ में। वह अर्थ क्या है? मेरा एक छोटा सा प्रश्न है आप सबसे, बहुत ही छोटा सा। कृष्ण जन्माष्टमी सोमवार को थी, और डेफिनेटली अगर आप रविवार के अखबारों को उठा करके देखें, क्योंकि रविवार को अखबार कुछ विशेष अलग तरीके से निकाले जाते हैं, तो सभी अखबारों में बकायदे कृष्ण पर बड़े बड़े लेख आपको पढ़ने को मिले होंगे। यहां तक कि मीडिया के जो दूसरे माध्यम हैं, चैनल्स पर भी आपको कृष्ण से संबंधित घटनाओं पर प्रोग्राम देखने को मिले होंगे, रेडियो में इसी तरह के गीत सुनने को मिले होंगे, गांव में चले जाइए तो लोक गीत गूंज रहे होंगे कृष्ण और राधा के प्रसंगों को लेकर के, और फिर वृंदावन और मथुरा का तो कहना ही क्या है। मंदिरों में बकायदे कृष्ण की पूजा हो रही है, आराधना हो रही है, भोग लगाए जा रहे हैं, जिन जिन की भी जो जो अपनी परंपराएं हैं सब उसका पालन कर रहे हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि कल का दिन एक ऐसा दिन था जबकि पूरा देश कृष्णमय था, और उसमें हम सब भी शामिल थे। मेरा अब एक छोटा सा प्रश्न, पूरे के पूरे माफीनामे के साथ, कि आपने इतना सब कुछ सुना, इतना सब कुछ देखा, इतना सब कुछ पढ़ा। देखिए, जो कुछ भी हम सब ने किया है वो हमारे अवचेतन मन में चला गया है, सब कॉन्शियस माइंड में चला गया है, जाता ही है, उसे तो हम रोक ही नहीं सकते, और जरूरत भी क्या है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि जब आप कृष्ण के बारे में कुछ पढ़ रहे होंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई बात आपको अच्छी लगी होगी, चाहे उसकी भाषा अच्छी लगी हो, चाहे उसमें व्यक्त विचार अच्छे लगे हों, चाहे कोई घटना कहानी ही अच्छी लग गई हो, कुछ ना कुछ जरूर अच्छा लगा होगा। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कृष्ण में शामिल हों और कृष्ण का कुछ अच्छा न लगे। कृष्ण की विराटता इतनी ज्यादा है कि आप इसमें कुछ भी ढूंढ सकते हैं, जिसका पूरा का पूरा कैरियर का ग्राफ आप सोचिए कि चरवाहे से लेकर के द्वारकाधीश तक का रहा हो, जो सभी कलाओं में पारंगत हो, तो उसमें तो हम जो भी चाहे ढूंढ सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हम सभी कृष्णमय थे, और डेफिनेटली जब आपने कृष्ण के बारे में पढ़ा होगा, उनके बारे में कुछ सुना होगा, तो कोई ना कोई बात आपको जरूर अपील की होगी। अब मेरा जो प्रश्न है वह यह है कि जिसने आपको अपील किया, जो बातें आपको अच्छी लगी या जो बात आपको अच्छी लगी, क्या आपने उसे कहीं नोट किया, कहीं लिखा? चलिए, लिखने का जमाना तो धीरे धीरे अब अतीत की बात होता जा रहा है। क्या आपने उसे अपने दिमाग में रख करके दोहराया? दोहराने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम किसी बात को बार बार दोहरा लेते हैं तो वो हमारे दिमाग में अंडरलाइन होती चली जाती है, और उसके जिंदा रहने की अवधि थोड़ी सी बढ़ जाती है। नहीं तो पता लगा कि एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, पढ़ा गायब हो गया। लेकिन जब हम उसे दोहरा लेते हैं तो थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन हमारी अपनी हो जाती है। क्या आपने ऐसा किया? मैं जानता हूं कि ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि नहीं, ऐसा नहीं किया, इसकी जरूरत ही क्या है, आज तक हमने ऐसा नहीं किया तो अब क्यों करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सच पूछे तो मैं स्वयं भी आपकी ही श्रेणी में हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा कभी कभी कुछ अलग कर लेता हूं। हाँ, मुझे जो बात बहुत अच्छी लगती है, अपील करती है, उसे मैं कहीं नोट कर लेता हूं। मेरे पास डायरियां हैं, कुछ डायरियां मेरे पास भर गई हैं इसी तरह की बातों से, तो उसमें मैं नोट कर लेता हूं। और फिर जब वक्त मिलता है तो फिर उन्हें दोहराता हूं। सच पूछे तो मैं दोहराता इसलिए नहीं हूं कि मैं उन्हें याद कर सकूं, मैं दोहराता इसलिए हूं कि मैं उनका स्वाद ले सकूं, क्योंकि मैं उनमें जो इकट्ठे करता हूं वो सब के सब बड़े स्वादिष्ट होते हैं, चाहे वो भाषा की दृष्टि से हो, विचारों की दृष्टि से हो, घटनाओं की दृष्टि से हो, या मेरी अपनी इच्छा के अनुकूल हो, जो भी हो। दोस्तों, ये जो मैं बात कह रहा हूं उसका सिर्फ एक पर्पज है, सिर्फ एक पर्पज है, और कृष्ण के माध्यम से मैं ये बात आप सबके सामने रख रहा हूं। वो यह कि कृष्ण के बारे में, जैसा कि मैंने कहा, यह एक विराट व्यक्तित्व है। अगर आप व्यक्तित्व कहेंगे, ज्यादा अच्छा होगा कि हम चेतना की बात करें। यह बहुत विराट चेतना है, और कृष्ण एक ऐसी क्रांतिकारी आंधी रही है जिसने अभी तक की चेतना में एक प्रकार से, आप यूं कह लीजिए कि क्रांति पैदा कर दी, बदलाव पैदा किया। उसने कहा कि नहीं, ये सब कुछ पुराना पड़ गया है, अब नए की जरूरत है। यानी कि कृष्ण इस बात को पुकार पुकार के कहते हैं कि नहीं, हमें लगातार अपनी चेतना का विस्तार करते रहना चाहिए, इसे आप चाहे तो बदलाव करते रहना चाहिए, कर सकते हैं, हमें अपनी चेतना का लगातार विस्तार करते रहना चाहिए, इसमें लगातार बदलाव करते रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस तरह से जब हम कुछ नोट कर लेते हैं तो हमारी अपनी चेतना के विस्तार की जो संभावनाएं हैं वो थोड़ी सी व्यापक हो जाती हैं। दोस्तों, मेरे इस सलाह पर थोड़ा सा विचार करें, और अगर आपको ठीक लगे तो आगे आप इसे अपना सकते हैं, और डेफिनेटली आप देखेंगे कि अपनी चेतना में आप कितना जबरदस्त किस्म का सकारात्मक परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। और जिस दिन महसूस करें तो मुझे एक छोटा सा ईमेल लिख दीजिएगा, तो इसी के जरिए मैं अपने आप को थोड़ी देर के लिए खुश कर लूंगा। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। नमस्कार।